ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम स्कंद 7 अध्याय 2 श्लोक नंबर 41 ये हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्य नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मैं श्लोक पढ़ूंगा, मेरे पीछे आप दोहराइए। भूतानि तैते निजयोनि कर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः तत्र हा आत्मा प्रकृतो अपि स्थितः तस्या गुणे अन्यतमा हि न भद्यते। भूतानि से भूतानिस्तेस्ते निजयोनि कर्मभिः भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशा न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थिता तस्या गुणैरन्यतमो हि भद्यते। इसको ऐसा भी गा सकते हैं, हम दूसरा स्टाइल में गाएंगे। भूत शब्दात तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। भूतानि जीवों के समस्त शरीर, तैते अपने अपने, निजयोनि अपने शरीर उत्पन्न करके, कर्म भी पूर्व कर्मों के द्वारा, भवन्ति प्रकट होते हैं, काले काल क्रम में, न भवन्ति अदृश्य होते हैं, सर्वशः सभी तरह से, ना नहीं, तत्र वहां, हां निस्संदेह, आत्मा आत्मा प्रकृतो इस भौतिक जगत के भीतर, अपि यद्यपि स्थिता स्थिति सॉरी स्थिता तस्या उस भौतिक शक्ति के गुणे विभिन्न गुणों के द्वारा, अन्यतमा अत्यंत भिन्न ही निस्संदेह बाध्यते बांधा जाता है। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। और एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है। अच्छा, हम बोलेंगे, ओके। प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बांधा नहीं जा रहता, क्योंकि वह व्यक्ति वह व्यक्ति शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना गया है। तात्पर्य यहां पर स्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतएव वैदिक आदेश है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिया जाए जिससे वह अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सकें और बारंबार जन्म मरण के भाव बंधन से छूट सके। स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्ध विन्दति मानः। भगवान तो सदा ही निर्देश देने के लिए तत्पर रहते हैं। दरअसल उसके निर्देश भगवद गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो प्रकृति के नियमों के नियमों से बद्ध कर नियमों से बद्ध कर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तीति। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो वे हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें बता सकेंगे कि किस तरह भौतिक जीवन से छूटकर हम भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार शरीर विशेष धारण करना पड़ता है, कभी पशु का तो कभी देवता का, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि शरीर यथा समय मिलता और विनिष्ट होता है, किंतु आत्मा वास्तव में शरीर में मिलता नहीं, अपितु वह गुण विशेष के वशीभूत होता है, जिससे वह पाप पूर्ण ढंग से जुड़ा रहता है। आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है, जिससे वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये आखिरी सेंटेंस जो है, मैं और एक बार पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक हम इसको ग्रहण करने का प्रयास करें। आध्यात्मिक शिक्षा से मनुष्य की चेतना बदल जाती है, जिससे वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। दत्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोग मेरे से बहुत बहुत उन्नत स्थिति में हैं आध्यात्मिक में। आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि मैं प्रभुपाद जैसे बताए हैं वैसा ही आपको बताने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2:22 श्लोक में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहे। ये हम सबको पता है। ये इसमें हम जैसे एक वस्त्र फट गया है और हम क्या करते हैं, दूसरे वस्त्र को धारण करते हैं। एक वस्त्र फट गया, दूसरे वस्त्र को हम धारण करते हैं। जो पुराना और व्यर्थ हो गया है, जीर्ण हो गया है, उस शर्ट को, उस वस्त्र को हम निकाल लिया और नया वस्त्र। वैसा ही भगवान बता रहे हैं, जब शरीर खत्म हो जाता है, व्यर्थ होता है, नष्ट हो जाता है, तो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगा। इसका अगर हम अर्थ लेते हैं, बहुत गूढ़ अर्थ है इसमें। शरीर छोड़ दिया और एक शरीर प्राप्त हुआ, और एक शरीर प्राप्त हुआ, फिर गो बैक टू द सेम थिंग, वो शरीर फिर जीर्ण हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा और एक शरीर लेगा। तो ये है चक्कर, ये जन्म मृत्यु चक्कर इसमें बताया गया है। छोटा बच्चा जन्म लिया और बड़ा हो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है और ऑफिस जा रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, फिर परिवार हो गया, फिर क्या होगा, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ा हो गया, और बुढ़ा होने के बाद क्या होता है, मरण। एक ना एक दिन मरना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी सदा के लिए जिंदा रहेगा। हाँ, तो ये देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। ये शरीर बदल रहा है अनक्षण, एवरी सेकेंड, हर सेकेंड बदल रहा है। और जब ये शरीर निकल के आत्मा दूसरा शरीर को ग्रहण करना ही पड़ेगा अपने अपने कर्म के अनुसार। आप थोड़ा केयरफुली देखिए, एक आदमी ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, हाँ पकड़ के ये देखिए, दो हाथों में दोनों तैली है, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म, एक पाप एक पुण्य, दिख रहा है ना स्मॉल वो, हाँ इधर ये घूम रहा है इसके साथ। जो भी हम पाप और पुण्य काम करते हैं उसको कलेक्ट करता है और अगले जन्म में उसका कर्म के अनुसार हाँ, दूसरा जन्म। अब दूसरा जन्म लिया, फिर वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। ये शरीर फिर जीर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये बेड बन गया वह परमानेंट है, नहीं, फिर मरना पड़ेगा। मरने के बाद फिर करें, फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा और एक शरीर लेना पड़ेगा। हमारे कर्म के अनुसार इसमें भगवान कह रहे हैं, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जैसे आपने सोचा है, जैसे आपने कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर। ये चक्कर में हम फंस गए हैं। हर जीव, हर मनुष्य जो भी इस धरती पर है वो इस चक्कर में है। कोई भी हो, हर एक आदमी इस चक्कर में है। अब हम इधर तक हैं, किधर तक हैं पता नहीं, या इधर हैं अभी कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल, जो भी है, जैसे भगवान का इच्छा। तो हम गुजरने वाले हैं। ये शरीर जब व्यर्थ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगर व्यर्थ नहीं होता शरीर, अगर बुढ़ापा नहीं आता है, आत्मा को शरीर मिल गया, एक मिनट सोचिए, आत्मा को शरीर मिल गया और बुढ़ापा नहीं आता, शरीर नष्ट होता नहीं होता है, तो वो शरीर छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने के लिए हमें ऐसा शरीर चाहिए जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। अब क्या करने से ऐसा शरीर मिलेगा? बहुत बड़ा यज्ञ करने से शरीर मिलेगा? नहीं। तपस्या करने से शरीर नहीं मिलेगा? नहीं। वो हम इस शरीर मिलना है तो गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ धाम में ही मिलेगा। और बहुत सारे सीनियर प्रवक्ताओं का जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो गोलोक वृंदावन धाम में वैसा ही है जो स्वरूप कहलाते हैं। वो शरीर जैसे अगर हम निष्ठा से प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, अगर उसको आचरण करते हैं तो हम जरूर हम उस स्थिति को, उस शरीर को फिर पा सकते हैं जिसको स्वरूप सिद्धि कहलाते हैं। हमारा स्वरूप उधर है, डेफिनेटली हमारा शरीर, हमारा स्वरूप गोलोक वृंदावन धाम में या वैकुंठ धाम में है, गारंटी है। मगर हम इधर घूम रहे हैं, एक न एक दिन जाना है। जब तक हम भगवान की सेवा ठीक से नहीं करते हैं, भगवान का हम ध्यान नहीं करते हैं, तब तक ऐसा ही चलते रहेगा। हम हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा शरीर, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रहा है, तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में हम क्या कर्म एक्चुअली कैसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक छोटा सा कहानी, जिसमें राजा अपना देश में घूमने के लिए जाता है, ये लोग क्या कर रहे हैं एक बार देखेंगे। तो वो एक बार देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण, दो ब्राह्मण, तीन ब्राह्मण कर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं। राजा पीछे से सुनते हैं, दिख रहा है ये राजा पीछे से देख रहा है, सुन रहा है। फिर उनको ठीक नहीं लगा, ये कर्म के बारे में क्या है, ये ठीक से नहीं बता रहे, इनको मैं बताऊंगा, इनको मैं सिखाऊंगा। उनको राज्य में अपने दरबार में बुलाया गया, तीनों को, तीनों ब्राह्मण आ गए और कहते हैं, देखिए कर्म के सिद्धांत जो आप बता रहे हैं ठीक नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहे कर्म को कैसे भोगते हैं आदमी। ये कहते हैं सच्ची में हमें शास्त्रों से क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहे। राजा कहते हैं क्योंकि आपको अनुभव नहीं हो रहा है आपके कर्म आपको कैसे कष्ट देता है या सुख देता है। मैं आपके लिए एक छोटा सा सबर, एक कौन है सैनिक, आ जाओ। आ गया सैनिक, इनको एक एक को एक एक थैली देना, और इसमें सुबह होने तक आप जितना भी फल भरें उसमें फल भर के लेके आइए कल सुबह। तो एक एक गया अपना वाइफ को, श्रीमती को बताते हैं, देखो ऐसा राजा ने कहा। अरे राजा के पास किधर समय होता है, वो क्या तुम जो भी फल लेके जाते हो राजा देखेगा क्या? अरे देखेगा नहीं। अरे कितना प्रॉब्लम्स, कितना समस्या, और तुम्हारा बोरी बांधा हुआ बोरी को खोलो देखो। तुम ना ऐसे करो, नीचे पूरा घास भूस भर दो और ऊपर चार पांच अच्छा सा आम या जो भी है। हाँ अरे कितना बढ़िया आइडिया तुम्हारा, एक पैसा खर्च नहीं है, बोरी लिया और नीचे पूरा घास और ऊपर ऊपर आम और इसको बांध दिया। हाँ अब बांध गया, चलो कल के लिए रेडी। दूसरा बहुत बड़ा पंडित है और बहुत व्यस्त रहते हैं अपना पंडित और अपना जो भी है टिप्पणी लिखने में, तो बोरी तो दिख रहा है, अपने शिष्य को बुलाते हैं, हे शिष्य तुम जाओ जाके लेके आओ। वो एक्चुअली गया जाके लेके आ रहे, दिखा रहे, देखो सड़ा हुआ कुछ उधर नीचे गिरा है वो। अरे जो भी है तुम भरो, तुम भर दो उसमें। तो पेड़ के नीचे गया, पूरा जो भी नीचे भरा है हाँ दिख रहा है, सड़ा हुआ सेब सड़ा हुआ जो भी है वो लेके आया और इसमें भर दिया और लेके आया। गुरुजी मैं लेके आया। हाँ ठीक है, भर दिया ना? हाँ भर दिया, भर दिया, पूरा भर दिया, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा, बहुत निष्ठा से एक एक अच्छा सा फल, बढ़िया बढ़िया, राजा ने कहा है फल लेके आओ और बढ़िया बढ़िया फल हाँ अच्छा सा देख देख के चुन चुन के इसमें भरते हैं। फिर तीनों आ गए सुबह, फिर राजा कहते हैं क्या आपने फल भर के लेके आए? तीनों कहते हैं हाँ जी लेके आए। तो पूछते हैं अच्छा ये बोरी बहुत बड़ा लग रहे हैं, इसमें आदमी कितने दिन गुजार सकता है इस फल से? बताते हैं दो हफ्ते गुजार सकते हैं आराम से, आराम से इसको खाए और दो हफ्ते आराम से रह सकते हैं। दूसरा भी कहते हैं हाँ हाँ दो हफ्ते रह सकता है, दो हफ्ते रह सकते हैं। राजा ने कहा दो हफ्ते रह सकते हैं ना? बोले हाँ जी जरूर रह सकते हैं, इसमें क्या है। तो राजा कहते हैं ठीक है इनको कारागार में बंद करो, कारागार में बंद करो और दो हफ्ते इनको कुछ नहीं देना, जो लाए वो अच्छा सा खाएंगे, उनको कर्म फल को उनको समझ में आएगा। ये आया अरे मैं तो कारागार में बंद हो गया, क्या नंबर है 102 102 देख रहे हैं। अब मैं राजा से कहूं कि नीचे पूरा घास है ऊपर हाँ आम है, पता नहीं राजा कुछ भी कर सकता है। अरे मैंने कहा फल लेके आओ, तू घास भर के लेके आए, कट करो इसका सिर। अरे नहीं बोलना, अगर नहीं कहता हूं दो हफ्ते चार पांच आम है मतलब तीन दिन में एक आम इससे गुजारना पड़ेगा। अब सोच रहा है क्या करना है, अब क्या करना है, वही जो कर्म है जो किया है उसको अनुभव करना पड़ेगा। दूसरा अब उसको नहीं खुला है, उनको जैसे खोलते हैं उसको समझ में आ गया ये तो पूरा सड़ा हुआ भरा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं मेरा पंडित दिखाने के लिए मैं बहुत सारा लिख के ये कर रहा था, मैं मेरा शिष्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अरे फिर वो क्या करने, वो बहुत दुखी। तीसरा जो भी है भगवान का इच्छा, मैंने जो फल लेके आया हूं भगवान को अर्पण करूंगा, रोज भोग लगाऊंगा अच्छा सा खाऊंगा, कोई बात नहीं भगवान ने मुझे फल का ये भोग लगाने के लिए मुझे आदेश दे रहे हैं। दो हफ्ते गुजर गया और ये मोटा व्यक्ति ये जो सड़ा हुआ खाया है वो तो बीमार हो गया, बीमार हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया, इतना बीमार हो गया। और ये डाइट कंट्रोल दो हफ्ते में बिल्कुल तीन एक आम तीन दिन पता नहीं बाद में उसको। और तीसरा व्यक्ति जैसा है वैसा है, अब उसको समझ में आया कर्म फल क्या होता है, अपने कर्म कैसे हमें बाधित करते हैं। एक्चुअली ये हम समझते हैं और समझने के बाद भी हम बुरा कर्म में लग जाते हैं। जो भी बुरा कर्म करते हैं एक न एक दिन पीछे आ जाता है, क्योंकि जैसे हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं ये तीनों का सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हम बद्ध जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। कंडीशन होना, बद्ध जाना मतलब एक्चुअली सपोज ये रूम एयर कंडीशन है समझ लीजिए, हाँ बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, अंदर आप आते ही आपको पूछे बिना आपसे अनुमति लेके, ऐसा नहीं कि गर्म आपका शरीर गर्म होगा, जो वातावरण है उसको कंडीशन करता है। जो वातावरण है गर्म है आप भी गर्म, आपका शरीर भी गर्म हो जाएगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा करेंगे। तो वैसा ही जैसे ही हम इस वातावरण में आते हैं तीनों गुण उसके ऊपर प्रभाव दिखा रहा है, तीनों गुण से हम उसके बंधन में आ जाते हैं और कर्म को करते हैं। तो हम एक्चुअली हरि हरि, हम एक्चुअली इस बंधन में फंस के ये चक्कर में घूम रहे हैं, एक से एक शरीर से दूसरे शरीर। ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा इसमें खेल रहा है, कीचड़ में खेल रहा है, कीचड़ में खेल रहा है, माँ आके बुलाती है, बेटा तुम कीचड़ में खेल रहे हो, अभी कुछ देर के बाद पार्टी में जाना है, वो कपड़े को निकालो। वो नहीं सुनता, नहीं सुनता, उसको मजा आ रहा है कि कीचड़ में खेलने, कीचड़ में खेलना बहुत मजा आ रहा है। तो कुछ देर के बाद अपना छोटा भाई या बड़ा भाई को भेजते हैं, देखो मैंने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया और तुम तो कीचड़ में खेल रहे हो, अब जाना है कि नहीं पार्टी को। तो ऐसा ही भगवत गीता के माध्यम से पूरा मनुष्य जाति को भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि मनुष्य कैसे अपना जीवन को सार्थक कर सकते हैं, मगर हम सुनते हैं नहीं। जैसे वो बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, माँ बुला रही है, नहीं जाता है, वैसा ही हम भगवान के आदेशों को पालन नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े मजे में हैं, बहुत बड़ा खुशी से हम जी रहे हैं, नहीं। फिर भगवान ऐसे नहीं छोड़ते, अपना रिप्रेजेंटेटिव जैसे प्रभुपाद जी है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बेचते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव को बेच के फिर आदेश को फैलाने का उनका जो सिद्धांत है फिर सबको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे उनका बड़ा भाई आके बुलाते हैं, आ जाओ, अगर उसका उनके बातों में आ गया, ठीक हो गया, सुधर गया तो फिर चले जाएंगे। वैसा ही प्रभुपाद जी के अगर हम अन्यायी बनते हैं, उनका जो आदेश उनको हम पालन करते हैं, हम जरूर इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमारा जीवन जो है बहुत मूल्यवान है, मनुष्य जीवन उतना आसानी से मिलेगा नहीं। 84 लाख अलग अलग योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर का वैल्यू, इसका मूल्य को हम समझना चाहिए कितना यूजफुल है। तो इस वृत्तांत में हम छोटा सा कहानी आपको दिखा देंगे, इसमें कोई ऑन कर सकते हैं, वो बटन होगा जो यू कैन जस्ट सी, वो लाइट होगा उसके ऊपर, उसको ऑन करें, हाँ आ जाएगा। एक आ जाओ, एक भिखारी रोड में बैठ के सबसे पैसे मांगता है, अपने हाथ में कटोरी है और कटोरी से टक टक करके दान दीजिए दान दीजिए। जो भी है कुछ कुछ लोग पैसे डालते हैं कुछ लोग। एक आदमी जैसे अपने कार से बाहर निकल रहा था, देखता है अरे ये कुछ अलग है, जैसे कोई वो टक टक कर रहा है अपना भिक्षा पात्र जो है जो हाथ में है वो टकटक कर रहा है। वो सोचते हैं नहीं, वो उसके पास गया, देखो तुम्हें ना मैं 1,000 रुपया दे देता हूं, तुम्हारा जो भिक्षा का पात्र है जो है वो कटोरी मुझे दे दो। वो भिखारी ऐसा देखता है, 1,000 रुपया दे इसको, अरे 1,000 कम है क्या, चलो ठीक है 2,000 दे देता हूं, 2,000 दे देता हूं। वो हाँ 2,000 दे दो दे दो। 2,000 लिया, वो पैसे लिया और वो कटोरी ऐसे दिया, ऐसे भागा। उसको वो भिखारी सोचते हैं फिर वापस आके तू 2,000 रुपये वापस दो बोल के फिर पूछेगा क्या, उसको डर लगता है। तो वो 2,000 रुपया लिया भाग गया। और ये क्या करते हैं, ये अपना कटोरी को अच्छा सा अपना बैग में रखा, ओह कितना बढ़िया चलो चलते हैं, घर से फास्ट चलाता है, घर घर जाके देखो मैंने क्या लाया हूं, आज आपका जन्मदिन है, देखो मैंने क्या लाया हूं, क्या कटोरी लेके आए, मुझे पता है वो है ना वो भिखारी का, वो कटोरी लेके आए हो, बदबू आ रहा है, इतना बदबू आ रहा है, वो कहते हो उसको कुछ डब्बा में लगा के हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, नहीं नहीं इसको देखो ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक देखो क्या है ये है सोने का, सोने का। तो फिर उसको मेल्ट करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं फिर डालते हैं, देखा 1 kg 1 kilo, अरे बाप रे, बेचारा भिखारी उसको पता नहीं लगा इसका मूल्य क्या है। हम भी हमारा शरीर जितना मूल्यवान है हमें पता नहीं लग रहा है। ये 84 लाख योनियों में घूम के हम हर बार सोचते हैं बड़ा मजे में है, बड़ा मजे में है, ये मजा ऐसे है। हाँ ये देखिए क्या हो रहा है, ये लगाया क्या, लगाया नहीं, और सोच रहे बड़ा मजा, बड़ा हवा दे रहा है, हाँ बड़ा हवा, हाथ से उंगली से घुमा रहा है, अरे कितना बड़ा मजा, कितना बड़ा मजा है, अरे मूर्ख ऐसा थोड़ी है, सच्चाई तो ये है, ये कभी घूमेगा नहीं, ये कभी घूमेगा नहीं, और तुम दुखी ही होगी। तुम लगाना है इस स्विच को, इसके अंदर बिजली से जुड़ना है, जब आप बिजली से जुड़ जाएंगे करंट इसके अंदर आएगा और ये घूमेगा। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, खुशी शांति उनसे ही मिलता है, खुशी या शांति हम अपने भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। जितना भी पैसे हैं, जितना भी बुद्धिमान है, जितना भी बड़ा पोस्ट में है, जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो भगवान के साथ नहीं जुड़ा है उसका परिस्थिति यही है। वो सोचता है मैं बहुत मजे में हूं, मजा नहीं, ये मूर्ख है कि ये पंखा घूम रहा है बिना बिजली से। हाँ आप बिजली से कनेक्शन करो फिर आपको खुशी शांति मिलेगा, आपको ये पंखा का असली मजा। वैसा ही अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तभी हम सच्ची में खुशी शांति प्राप्त करते हैं, नहीं तो नहीं, नहीं तो ऐसा ही पैसे के लिए ये चक्कर चलते रहेगा, पैसे घर स्त्री जो भी है, अरे मिल जाएगा थोड़े देर में मिल जाएगा, अरे वो मरने के बाद भूत बन गया, भूत बन के भी अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, ये तो कभी मिलने वाला नहीं। तो इसलिए हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को हम ग्रहण कर रहे हैं और उस शरीर हमारे कर्म के अनुसार दूसरा मिल रहा है। हम ये सिद्धांत को बिल्कुल समझना चाहिए और ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये चक्कर अपने आप टूट जाएगा और हम चले जाएंगे गोलोक वृंदावन, ये तो होने वाला नहीं है। हम ऐसा ही घूम रहे हैं, ऐसा ही घूम रहे हैं एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में, और हमारा कर्म अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है कि हम बार बार कर्म कर रहे हैं जो हम हमको बांध रहा है, जो हमको आगे जो हमको बांध रहा है, और हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर, ये जो भी वृत्तांत इधर हो रहा है एक्चुअली कौन बता रहा है? यमराज जी बालक के रूप में आके बता रहे हैं। यमराज जी बालक के रूप में आके किधर बता रहे हैं? ये वृत्तांत हम हर दिन सुन रहे हैं। मैंने सोचा कि इसको छोड़ दूं, फिर भी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम बताना पड़ेगा। हिरण्याक्ष को जब मार दिया भगवान ने, फिर सब लोग रोदन कर रहे हैं। उनका पत्नी, अपना हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष, उनके पत्नी, उनके माँ और उनके बच्चे सब लोग रोदन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप जाके बात कर रहा है, प्रवचन दे रहा है। उसमें पहले बताते हैं हम सब लोग मिलते हैं, जुड़ जाते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एक पानी, अगर जलाशय में पानी के लिए सब जो चल रहा है उधर जाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से मिल गया है, मगर जैसे पानी पी लिया एक दूसरे अपना अपना रास्ता में चले जाते हैं। ऐसे पूरा सिद्धांत को बताते हैं। ये बताने के बाद फिर यमराज का कहानी बताते हैं, जो एक राजा, हाँ राजा मर गया और रानियां इतना रोदन कर रहे हैं कि उनका रोदन यमपुरी तक पहुंच गए। यमराज देखते हैं कौन है इतना रोदन कर रहा है, मैं इनको शिक्षा देता हूं। यमराज आते हैं बालक के रूप में, बालक के रूप में आके उस मरा हुआ सुयज्ञ राजा को बताते हैं, सुयज्ञ राजा के माता रानियों को बताते हैं बालक के रूप में आके कि देखो ये शरीर, कोई आप जो सोच रहे हैं ये शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, परमानेंटली रहने वाला नहीं है। पूरा एक एक करके सिद्धांत बताते हैं। ये 41st श्लोक जो है यही है। ये 20 श्लोक से 7.220 से शुरू हुआ है, ये चलता है और दो तीन श्लोक, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये बहुत देर तक चलेगा, और कहानी बताते हैं। तो ये एक्चुअली यमराज बता रहे हैं, मगर यमराज जो बता रहे हैं हिरण्यकश्यप बता रहे हैं, और ये जो भी है पूरा भागवतम। कहने का तात्पर्य ये है कि एक शरीर से दूसरा शरीर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजच्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जो भाव से हम मरण समय में जो जो भाव से हम शरीर को त्यागते हैं, वो भाव से हम शरीर प्राप्त करते हैं। और स्तोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च, वैसा ही स्तोत्रम चक्षु आंखें, स्तोत्रम ये कान आंख, वैसा ही बन जाता है। अगर कोई मांस खाने का इच्छा से, रक्त चूसने का इच्छा जिसके ऊपर आके वो वैसा मर जाता है, अगले इसमें जो चूसने वाला टाइगर बने और कुछ बने। तो ये हम खुद हमारा अगला जन्म को निश्चय कर रहे हैं। अगर हम भगवान के सेवा में लग जाते हैं तो हम इस चक्कर से बाहर आ सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक भगवान के साथ जुड़ के और भगवान जैसे कहते हैं वैसे कठपुतली के जैसे नाचे, नहीं तो ये बंदर के जैसे नाचे। ये जब डमरू बजा रहा है ये नाचेगा, बहुत अच्छा नाच रहा है, और ये बंदर वाला क्या कहते हैं, अरे अच्छा पैसे मिल रहा है और करो, अच्छा नाचेगा प्रॉब्लम है। अगर नहीं नाचता है, अच्छा नाच लिया नहीं और एक शो करो, नहीं नाच रहा है मार पड़ेगा। अगर अच्छा शो नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं नाच रहा है, फिर भी मार पड़ेगा। अच्छा नाचा तो भी मार पड़ता है, नहीं नाचा तो भी मार पड़ता है, ये तो कभी भी मार खाने का है। अब इधर अच्छा नाचा इसका नाम नहीं है, जो नचवा रहा है कठपुतली को, जो नचाता है उसका नाम है। अच्छा नहीं नाच रहा है, ये क्या कर सकता है, कठपुतली वाले नहीं नचवा रहा है, तो इसका कोई बंधन में नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, मेरा जैसे ही वो नचाएगा मैं नाच रहा हूं। अगर हमारे अंदर ये पूर्णतया शरणागति ऐसे आ जाता है कि भगवान जैसे हमें नचा रहा है हम मैं नाच रहा हूं, मैं पूरा भगवान का कृष्ण का शरणागत हूं, जब हमारे अंदर ये भावना आता है हम ये जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो ये देखिए, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा छोटा गधा, हो आ जाओ पीछे, छोटा बच्चा छोटा गधा, बड़ा बड़ा और बढ़ रहा है, और गधा गधा का परिवार, मनुष्य मनुष्य का परिवार, गधा गधा के जैसे, ठीक है गधा के जैसे काम कर रहा है, आदमी दिन रात पैसे के पीछे काम कर रहा है, और गधा बूढ़ा हो गया आदमी बूढ़ा हो गया, गधा मर गया आदमी मर गया, अंतर क्या हुआ? अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, इस जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आने का प्रयास नहीं करते हैं, ये दोनों में अंतर 100% है ही नहीं, 100% सेम। बुद्धिमान व्यक्ति जो भी है ये ही समझता है कि हम चक्कर में फंसे हैं, हम कोई मजा नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली दुर्भाग्यवश हम सोच रहे हैं कि हम बहुत मजा कर रहे हैं, ये मजा की बात नहीं है, हम फंस गए हैं, इससे बाहर आना है। जैसे एक बच्चा जब कीचड़ में खेल रहा है, माँ आके बताती है कीचड़ से बाहर आ जाओ, तुम जाना है घर आ जाओ, नहीं सुनता है, हम भी वैसा ही नहीं सुन रहे हैं, और इसमें कीचड़ में हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको बड़ा मजा आ रहा है। जब उनके बड़े भाई को भेजते हैं, देखो मैंने बहुत अच्छा ड्रेस पहन लिया, मैं बिल्कुल जा रहा हूँ पार्टी में, तू घर आ जाओ, तब वो सुधर के हाँ हाँ घर आना है। वैसा ही भगवान ने भगवत गीता में भागवतम में संपूर्ण ज्ञान हमें देने का प्रयास किए हैं, संपूर्णतया दिए हैं, मगर हम नहीं सुनते, इसलिए भगवान उनके शुद्ध भक्तों को भेजते हैं जैसे प्रभुपाद जी को, उनके आदेशों को पालन करो और निकल जाओ ये जन्म मृत्यु चक्कर से। अगर हम सुनते हैं तो हम प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करके निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। इसका प्रथम है मेन, हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से हमारा काम शुरू होता है, और चार नियमों को पालन करने से। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र को सीरियसली ले और हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से बिना कोई ऑफेंसेस, बिना कोई अपराध से हम ये जप करके हम अपना ये चक्कर से बाहर आने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका कोई प्रश्न जो आप सोचते हैं मैं जवाब दे सकता हूं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। वही तो, यम यम वापि स्मरण भाव चदच्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। 8:6 जैसे आदमी का शरीर छोड़ने समय पर उनका मन में जो आता है वही प्राप्त करता है, जो भाव से वो मर रहा है वही भाव को प्राप्त करता है। अगर कोई खाने के चीज में, कोई पीने के चीज में, कोई ऐसे मांस खाने के चीज में, वो मांसाहारी बनेगा। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं तस्मात सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यचा, अर्जुन को बता रहे हैं तस्मात, इसलिए अर्जुन सर्वेषु कालेषु सदा मुझे ध्यान करो और अपना कर्तव्य जो है युद्ध युद्ध भी करो, ऐसा नहीं कि ध्यान करो जंगल में चले जाओ ध्यान करो, नहीं, भगवान नहीं कह रहे। तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनस मारा युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशिष्ट्य संशयः। तो जब आपके मन में सदा मुझे याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बिना कोई शक आप कह सकते हैं, बिना कोई शक आप भगवत धाम में जा सकते हैं। तो हम अगला जन्म हम खुद बना रहे हैं। अगर हम भगवान को ही याद करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, जरूर मरण समय में भगवान को स्मरण करेंगे और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए सदा भगवान को स्मरण करना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, जो प्रभुपाद जी ने बताया। और प्रभु, हाँ जी, हाँ जी बताइए। अपने कर्म के अनुसार अलग अलग देह को प्राप्त करता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, हम खुद हमारा कर्मों के फल के रूप में, ईश्वर उत्तरदायी नहीं है। भगवान कृष्ण उत्तरदायी नहीं है, उन्होंने शरीर दिया है और अपने इच्छा से जो भी थोड़ा सा स्वतंत्र जो दिए हैं वो उससे हम काम कर रहे हैं। नहीं नहीं आप रख लीजिए, बस मैं तो कोई डाला था है, बस अब लास्ट में क्यों ये और किसी को डाल दी। नहीं नहीं भगवान आदेश तो दिए हैं, यही एम एम वापिस स्मरण भाव चे चंदे कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो आप मन में सोचते शरीर को त्यागते हैं उसी भाव को आप प्राप्त कर लेते हैं। दैट्स व्हाई, इसलिए तस्मात सर्वेषु कालेषु माम स्मरेद्य च, इसलिए मुझे हमेशा स्मरण करो, मुझे स्मरण करो। कृष्ण कह रहे हैं मुझे स्मरण करो और अपना जो ये है कर्म है युद्ध करना वो करो। जब आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालता, वो अकर्म कहलाता है। हाँ वो अकर्म है, ना विकर्म है ना सकाम कर्म है, वो अकर्म, वो सब कृष्ण के लिए हो रहा है, कृष्ण को चले जा रहे हैं, हम कोई बंधन में नहीं पड़ते। हमारा कर्म के हमारा नहीं, आप ये ना 8.6 अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 अध्याय 8 श्लोक नंबर 7, एक्चुअली 5, 6, 7 तीन है वो, उसमें जो टिप्पणी दिया है यही है। यम जैसे आपका भावना होता है शरीर छोड़ने पर, वही भावना से आप अगला शरीर प्राप्त करते हैं। हमारा कर्म के अनुसार हमारा भावना आता है। हाँ आई एम सॉरी, मैं शायद यही है हमारा भाव। अगर हम हमेशा भगवान को याद रख रहे हैं, जब शरीर छोड़ रहे हैं भगवान को ही याद करेंगे। अगर हमारा काम किसी को धोखा देने में पैसे बनाने में है तो हमारा मन शरीर छोड़ रहे हैं, अरे मेरा पैसा इतना था किधर गया, वो बिजनेस ये वो, वही भावना में आता है, आएगा नहीं भगवान का स्मरण आएगा नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं 8.6 तस्मात सर्वेषु कालेषु माम स्मरेद्य च, इसलिए मुझे हमेशा स्मरण करते हुए आप युद्ध करो। अरे अरे अरे, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराणम की जय।